इस तरह से आपका किरदार, आप देखिए कि ये एकदम सब नहीं मिलता, आपकी जवानी में ये झलक थी कि आप आगे कुछ बड़ा काम करने वाले हैं, और यही हुआ, नबूवत के आसार शुरू हुए। बस इसका हम थोड़ा सा हिस्सा करके फिर आज का ये सेशन स्टॉप करेंगे कि जवानी में आपका कंडक्ट और आपका किरदार ऐसा था कि लग रहा था कि ये बच्चा दूसरों से ज़्यादा सुलझा हुआ है, सुस्त है। हुआ क्या कि आपके अंदर सोच पैदा हो गई, कौम मेले ठेलों की आदी और नाचने गाने और हराम हलाल की तमीज़ ना रखने वाली थी, अल्लाह के नबी प्योर थे। नतीजा क्या हुआ कि दिन ब दिन आपका फ़र्क अपनी कौम से बड़ा होने लगा, इस तरह से आप कटने लगे। ये भी होता है, कभी इंसान अगर सही सोच पे हो ना तो बिगड़े हुए लोगों के साथ खुश नहीं रह सकता, चाहे आप शादी के हॉल में बैठे हों या किसी मेले में बैठे हों। सोच का फ़र्क बंदों में फासला पैदा कर देता है। नतीजा क्या हुआ कि आप तन्हाई पसंद हो गए, आपको तन्हाई अच्छी लगने लगी, अलग थलग रहते। और जब बंदा अकेला रहता है ना तो उसमें एक खूबी पैदा होती है, गौर व फिक्र की। अब जैसे अगर हम बोलते ही रहें तो उस वक्त बातों में रहेंगे तो हम दूसरे की बात सुन रहे होंगे, अपनी नहीं सोचेंगे। दिन ब दिन आपके अंदर ये तड़प पैदा हो गई कि अल्लाह मेरी कौम का क्या बनेगा, अल्लाह इनको क्या हो गया, इनको समझ नहीं आता। फिर आप एक ख़ास माहौल में अपने आप को लाने के लिए गारे हिरा तक जाने लगे। आप साल में हर रमज़ान में गारे हिरा में चले जाते, हज़रत इब्राहिम के दीन की जो बची खुची तालीमात वहाँ मौजूद थी उस दौर में, उसके मुताबिक अल्लाह की इबादत करते। पूरा महीना कहते हैं कि आप वहाँ रहते, फिर वापस आते, खाना काबा का तवाफ़ करते और अपने घर जाते। 3 साल तक आपका यही अमल रहा कि आप रमज़ान वहाँ गुजारते। तकरीबन आपकी उम्र मुबारक अब 40 साल की हो रही है। अब बिल्कुल वो एक प्राइम टाइम आ गया है जो अल्लाह के पैगाम को जज्ब करने का है। और लिख लें 40 के करीब की उम्र, यानी लेट 30s या 30s में आप आ गए हैं, और 40s में बेस्ट टाइम होता है कुरान को खस करने का। इंसान इस तरह जज्ब करता है कि उसके अंदर जाता है। कहते हैं कि आप जब 40 साल की उम्र के हुए, और पिछले तमाम अंबिया कराम भी 40 साल की उम्र में ही नबी बनाए गए थे, तो आपके अंदर कुछ निशानियां शुरू हो गई। रात को जो ख्वाब देखते सुबह बिल्कुल वही हो जाता, कभी रोशनी नज़र आती, कभी कोई आवाज़ सुनाई देती। आप फरमाते हैं कि मैं मक्का के उस पहाड़ को जानता हूँ जो नबी बनने से पहले मुझे सलाम किया करता था। जब 3रे साल आप रमज़ान में पहुंच गए ग़ारे हिरा में, आपकी उम्र मुबारक का 41वां साल शुरू था, क्या आप इबादत में मसरूफ़ हुए, क्या आपको पीछे से एक आवाज़ आई, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वहाँ हाज़िर हुए, आपको वही और नबूवत से नवाजा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत से मिलता है कि अल्लाह के नबी पर वही का आगाज़ नींद में अच्छे ख्वाब से हुआ था। आप जो ख्वाब में देखते सुबह की रोशनी की तरह वो खुल जाता, तन्हाई आपको अच्छी लगती, गारे हिरा में जाके रहते, कई कई रातें वहाँ रहते और इबादत करते, कुछ तोशा ले जाते खाने के लिए, हमारा तो खाना ही नहीं ख़त्म होता ना, सत्तू ले जाते, कभी खजूरें ले जाते, ख़त्म हो जाता तो वापस आते, कभी हज़रत खतीजा पीछे से आपको खाना देने जाती। और उसी में एक दिन आपके पास फरिश्ता आया और कहा, इकरा, पढ़ो। आपने फरमाया, वमा अना बिकारिन, मैं पढ़ नहीं सकता। अनपढ़ थे आप, इलिटरेट थे। आप कहते कि उसने मुझे झिझोड़ा, पकड़ा और मुझे ऐसे गले से लगाया जैसे किसी को खींचते हैं ना। कहते इतना मुझे दर्द हुआ कि मुझे लगा कि मेरा जिस्म टूट जाएगा। फिर मुझे छोड़ा, कहा पढ़ो। मैंने फिर यही कहा, मैं नहीं पढ़ सकता। 2-3 बार ये मामला हुआ, फिर उसके बाद अल्लाह ने अपने नबी का सीना खोल दिया और कहते हैं कि मेरी ज़ुबान पे आयतें आ गईं कि इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, खलक अल इंसान मिन अलक, इकरा व रब्बुक अल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लम अल इंसान मा लम यालम। सूरत अलक की पहली 5 आयतें कि पढ़ो अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया इंसान को लोथड़े से, पढ़ तेरा रब बड़ा करीम है जिसने कलम के जरिए इल्म दिया इंसान को, वो बात सिखाई जिसे वो जानता नहीं था। बस इन आयतों का दिल पर नजूल था कि अल्लाह के नबी कांपने लगे, थड़कते दिल के साथ वापस आए, जम्मे लोनी दस्से रोनी दस्से रोनी। बीवी को कहा, मेरे ऊपर चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे अपनी जान का ख़तरा है। आपको नहीं पता ये फरिश्ता है क्या है, लेकिन अल्लाह ने वो फितरत के ऊपर जो एक रखा हुआ असर वही का, उसकी वजह से आप पहचान गए। हज़रत खतीजा को किस्सा सुनाया, हज़रत खदीजा ने एक अच्छी बीवी होते हुए आपको तसल्ली दी, कल्ला हरगिज़ नहीं, वल्लाहि मा युहज़ीक अल्लाहु अबदा, अल्लाह हरगिज़ आपको ज़ाया नहीं करेगा, क्योंकि इन्नक लतसिलुर रहम, आप रिश्तेदारियों को मिलाते हैं, व तहमिलुल कल्ला, और दूसरों का बोझ उठाते हैं, व तकसिबुल मादूम, खाली हाथ वालों का बंदोबस्त करते हैं, व तकरीद दईफा, और मेहमान की खातर करते हैं, व तोइन अला नवा इबल हक की, और हक के सिलसिले में पेश आने वाले मसाइब में मदद फरमाते हैं। यहाँ आप एक एक जुमले पे गौर करके रुकें तो गौर व फिक्र का नुक्ता है। ये खूबियाँ थीं तभी तो बीवी ने तसल्ली दी ना, और जब ये खूबियाँ आती हैं तो फिर अल्लाह के कलाम का बोझ भी ठाला जाता है। याद रखें, कुरान पढ़ के भी अगर अमल नहीं आ रहा ना, तो किरदार चेक करें, हमारे अंदर कमी तो नहीं, छोटी छोटी बातों पे तो नहीं लड़ते। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत खदीजा अपने चचाजाद भाई वरका बिन नौफल के पास ले गई, जो दौरे जाहिलियत में ईसाई हो गए थे, इब्रानी लिखनी आती थी इनको, और इंजील भी पढ़ते थे इब्रानी में, बूढ़े भी थे और नाबीना भी थे इस वक्त। हज़रत खदीजा ने जाके अपनी बात सुनाई कि ज़रा सुने ये क्या कहते हैं। जब अल्लाह के नबी ने सुनाया तो वो पहचान गए, जहाँ दीदा शख्स थे ईसाइयत को जानते थे। कहने लगे, ये तो वही फरिश्ता है जो ईसा के पास आया था और कहा, काश मैं उस वक्त जवान होता जब तुम्हारी कौम आपको निकाल देगी, तो मैं उस वक्त आपका साथ दूंगा। कहा, मेरी कौम मुझे झुटलाएगी, वो तो मुझसे इतना प्यार करते हैं, यही गुमान होता है ना हमारा अपने खानदानों के बारे में। तो वरका ने कहा, हाँ कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब भी कभी किसी ने दीन का कोई पैगाम दिया हो, हक लाया हो, और लोगों ने उसकी दुश्मनी ना की हो, उसके बारे में वहाबी होना, साबी होना, और उसको टेररिस्ट और फंडामेंटलिस्टिक ना कहो। ये हक की पहचान है कि लोग मुखालफत करते हैं। हम बहुत सारे लोगों को किसी के पास आता देख के सोचते हैं ना कि ये अच्छा होगा, तभी बहुत सारे लोग आते हैं। गलत है, याद रखे, हक के साथ हमेशा थोड़े लोग होते हैं। जिन दीनदारों को सारे ही ठीक कहते हैं ना, उसमें फ़िक्र की बात है, हम कोई किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, लेकिन फ़िक्र की बात है कि कहीं वो सबको ही तो नहीं खुश रखते, जो तुम कर लो वो भी ठीक, जो तुम कर लो वो भी ठीक। तो मजमे जमा हो जाना कोई कामयाबी नहीं है, यह है कि थोड़े से भी लोग हों लेकिन बात ठीक कर रहे हो। जैसे थोड़ा सा खालिस शरबत हो, वो ज़्यादा मज़े का होगा, बजाय इसके कि उसके अंदर 4 गिलास पानी डाल के फीका शरबत आप दूसरों को देने लग जाएँ कि ज़्यादा लोग खुश हो जाएँ। लेकिन बहरहाल यह है कि वरका की ये बात मनो अन साबित हुई। खुद तो वो इस बात के कुछ ही दिन के बाद फौत हो गए, और पहली वही के बाद वही का सिलसिला रुक गया। अब इसको आप सोचिए ज़रा कि पहली दफ़ा वही आने पे आप कितने दुखी थे, परेशान थे, तकलीफ़ महसूस कर रहे थे, लेकिन आज वही आनी रुक गई तो मिस करते थे। आप इसको अपने ऊपर लेके सोचें। कभी आपका ईमान का लेवल बहुत बुलंद हो, नमाज में भी मज़ा आता है, अकेले में अल्लाह से बात भी करते हैं, ख़ासतौर पर रमज़ान में या हज उमरा करके हैं तो होता है, फिर आए इस आहिस्ता वक्त की गर्दिश पर है तो हमारी सोच बदलती है, फिर आप उस कैफियत को मिस करते। कई साथी आते हैं, रोते हैं, कहते हैं वो मैं मिस करती हूँ, मुझे इतना मज़ा आता था, पहले कुरान पढ़ती थी रोना आता था, अब कुरान पढ़ने के दौरान भी काम करते रहते हैं, दिल सख्त होने लगता है ना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही के बाद कुरान रुका तो आप बोझ में आ गए, फील करते थे, मिस करते थे, क्या वजह हो गई है, क्यों फरिश्ता नहीं आ रहा, क्या मेरे साथ ऐसा मामला हो गया, दिस एंड दैट। तो इसके बाद कहते हैं कि रमज़ान के महीने में लैलतुल कदर जब आई तो फिर शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, और इसी तरह सूरत कदर में हम पढ़ते हैं इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल कदर, कि रमज़ान की रातों में यह कुरान नाजिल होना शुरू हुआ। तो रिवायात में आता है कि रात के पिछले पहर, पीर की रात थी, फजर की सुबह तुलू होने से पहले ललतुल कदर की रातों में ये रात थी, आखिरी 10 रातों में कोई एक रात है ख़ास तौर पे आउट। तो कहते हैं कि 21वीं रमज़ान थी कि वहाँ से फिर दोबारा वही का सिलसिला शुरू हो गया। मतलब क्या है कि रमज़ान के साथ कुरान का बड़ा गहरा ताल्लुक है। डेट्स आपके पास लिखी हुई हैं, आप देखना चाहे तो देख लें, लेकिन बहरहाल वो ताक रातों में से एक रात थी कि जिसमें इस कुरान का नज़ूल अल्लाह ताला ने शुरू किया। कुछ अरसा वही बंद रही, उसके बाद फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बहुत दुखी रहे, तकलीफ़ महसूस की, और इतना ज़्यादा बोझल होते थे कि जाते थे कहते थे मेरा दिल करता था मैं अपने आप को पहाड़ से गिरा लूँ, आपकी वो आदत भी थी माह रमज़ान में तो इतकाफ़ करने की। जब वो पूरा हुआ तो कहते हैं कि यकम शवाल को सुबह हिरा से उतर कर जब मक्का रवाना हुए तो आपको पुकारा गया। पूरी रिवायत मौजूद है कि आसमान से पुकारा गया, दाएं देखा कुछ नहीं, बाएं देखा कुछ नहीं, आगे नहीं कुछ नहीं, पीछे नहीं, जब ऊपर देखा तो ऊपर जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, वही फरिश्ता जो गारे हिरा में मेरे पास आया था। मैंने उसको देखा और उसको देख कर मेरा दिल रोब से भर गया, मुझे ऐसे लगा पूरे आसमान पे जिब्राइल है। और रिवायात में आता है कि उस वक्त जिब्राइल के सिर्फ दो पर खुले हुए थे और उनके 600 पर हैं, इतने बड़े हैं ये फरिश्ते, छोटे नहीं होते। कहते हैं कि इसके बाद मेरे दिल पर फिर रोब तारी हो गया, वापस मैं गया और हज़रत खदीजा को कहा कि दस्सर ऊनी दस्सर ऊनी, मुझे चादर उड़ा दो। फिर उस पर या अय्युहल मुद्दस्सिर कौम फानज़िर वाली आयतें नाजिल हुई और आपको एक नया काम दे दिया गया। दो बड़े काम शुरू में ही आपको दे दिए गए, कौम फानज़िर, खड़े हों, खुद भी अल्लाह के रास्ते में जमें और लोगों को भी डराएं, और दूसरा काम क्या था कि अल्लाह के दीन को लागू करें, इस पे अमल करें। सिर्फ ये पढ़ने वाली किताब नहीं है, पूरी सूरत जब आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह मुद्दसर तो आप इसका मैसेज समझेंगे, लेकिन यहाँ से आप कम अज़ कम तबलीग का सिलसिला शुरू हो गया है। इंशाल्लाह हम अगली नशिस्त से नबी सल्लम का तबलीगी सफ़र देखेंगे कि किस तरह से ये दीन फैला और कहाँ से कहाँ पहुँचा, और साथ ही दुख के साथ हम उम्मते मुस्लिमा का आज के हालात का तकाबुल भी करके देखेंगे कि आज हम मुसलमान क्या उसी ज़िंदगी पे हैं, आज हमारी ज़िंदगी के गम और हम क्या हैं, रोटी कपड़ा और मकान, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। पहले अपनी तालीम की फ़िक्र रहती है फिर बच्चों की तालीम शुरू, पहले अपनी शादियां करते फिरते हैं फिर बच्चों की शादियां, पहले अपने घर बनाते हैं फिर बच्चों के। तो आज उम्मते मुस्लिमा उस खोई हुई भेड़ की तरह है कि जिसको मंजिल नहीं दिख रही। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह के नबी की ज़िंदगी का ये सफ़र हम सबको वापस ट्रैक पे ले आए और हम वही ज़िंदगी बसर कर सके जो अल्लाह के नबी की ज़िंदगी थी। कोई सवाल जो आज के पूरे सेशन को सुनते वक्त आपके जहन में आया हो तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है बातें जी? आप नसरी नसीम नाम है ना आपका जी, नसीम आप शेयर करें कुछ जी। बिल्कुल, नबी का रास्ता ज़िंदगियों को आसान कराने वाला है इंशाल्लाह। अभी तो आज हमारा सिलसिला शुरू हुआ है, जब आप अमली से सिलसिले, अब कल हम नबी सल्लम का मक्की दौर शुरू करेंगे, नबी दौर कैसे क्या हालात है, आंखें खुल जाती हैं। मैं तो कहती हूँ कि सिर्फ आज के दौर में सीरत के ही सेशंस लोगों से शेयर कर लें तो उससे ही बहुत बड़ी खैर होती है। हमारी क्लास का वक्त चूँकि पूरा होता है, इंशाल्लाह पहुँचते हैं। करना क्या अब आपने कल तक क्या करना है? बाय द वे आप क्या सोच रहे हैं जी, आप क्या करेंगी आपसे लेके कल तक? बच्चों को ये सारी सीरत सुनाएंगी? ठीक है, बहुत अच्छी बात। और क्या करेंगे जी इधर से? आप क्या करेंगी? रिपीट करना है? ठीक है। आप देखिए कि अभी तो आपका ये एक बिल्कुल प्रेप सेमेस्टर है ना, तो आपके लिए बहुत इजीली ये सब लेना है। बस आज एकेडमिकली चीज़ों में ये है कि ये जितना ही हमने पढ़ा है अपनी बुक में जाके गो थ्रू करें, कुछ चीज़ें याद करें। कल जो ग्रुपिंग टाइम होगा ना, तो आज जो कुछ सीखा है, अगर तजवीद के सेशन में जो बात हुई है, और आज तो ज़्यादा बताया नहीं क्या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आपके साथ हुए हैं, ये इसी के अंदर से आपसे छोटे छोटे सवाल में पूछा जाएगा। वो कोई टेस्ट नहीं होता ना, इम्तिहान होता है, बेसिकली आपकी दोहराई कराई जाएगी। ठीक है? और वैसे आपने क्या करना है इसके अलावा? आपने अपनी दोस्तों से शेयर करें, कितने लोग सोच रहे हैं कि उनकी दोस्तों को आना चाहिए और वो उनसे शेयर करेंगे, वो हैंड रेज करें, दो साथी घर वाले? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह ताला इस पे कोशिश करते रहे। और अब आपको फर्दर कोई एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प चाहिए तो फील फ्री, आप लोग बाहर हेल्प ले सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।